नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ साझा कर रहा हूं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध कवि जीवनी, जो साहित्य अकादमी ने अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किया है। रविंद्रनाथ के निबंध भाग तीन में प्रस्तुत किया है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे साहित्यकार। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर महान कवि, महान उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, चित्रकार, कितने ही क्षेत्रों में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना योगदान दिया। उन्होंने साहित्य की आलोचना भी की और साहित्य की समालोचना में उन्होंने अपने प्राचीन साहित्य को वर्तमान जीवन से जोड़कर देखा और उन रचनाओं में छुपे हुए जो अदृश्य अर्थ थे उनको भी प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्यिक निबंध, साहित्य की रचना प्रक्रिया के बारे में, रचनाकार की मानसिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों के बारे में, उसकी वर्गीय स्थितियों के बारे में, अनेक आयाम उनके साहित्यिक निबंधों में साहित्यिक सवालों के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, जो आज भी लेखकों के लिए, पाठकों के लिए, समालोचकों के लिए एक अमूल्य निधि है। उनके इन साहित्यिक निबंधों से, उनके साहित्यिक विचारों से, उनके साहित्य के बारे में, उनके विचारों से आज भी रचनाकार, लेखक, पाठक लाभ उठा सकते हैं। तो प्रस्तुत है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध कवि जीवनी। कवि टेनिसन के पुत्र ने अपने स्वर्गवासी पिता की चिट्ठी पत्री और जीवनी दो बृहत खंडों में पुस्तकाकार प्रकाशित की है। प्राचीन कवियों के जीवन का विस्तृत वृत्तांत खोजने पर भी नहीं मिलता। तब लोगों की जीवनी में रुचि नहीं थी। इसके अलावा बड़े छोटे सभी लोग आज की अपेक्षा अधिक निजी जीवन जीते थे। चिट्ठी पत्री, अखबार, सभा समितियों, साहित्यिक वाद विवादों का ऐसा जोर नहीं था। इसीलिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों के जीवन की घटनाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिफलित होते देखने का सुअवसर तब नहीं मिलता था। बहुत से भ्रमणशील लोग बड़ी बड़ी नदियों का उत्स खोजने दुर्गम स्थानों पर गए हैं। महान काव्य नदी का उत्स खोजने की उत्सुकता भी होती है। आधुनिक कवि के जीवन चरित्र से यह कुतूहल शांत हो सकता है, ऐसी आशा मन में जागती है। लगता है आधुनिक समाज में कवि के लिए छुपने का स्थान नहीं बचा। काव्य स्रोत की उत्पत्ति जिस शिखर से हुई है उस शिखर तक रेलगाड़ी चल रही है। इसी आशा से अत्यंत आग्रहपूर्वक दो बृहत खंडों में पुस्तक प्रकाशित की गई है, किंतु कवि कहाँ है और काव्य स्रोत किस गुहा से प्रवाहित हो रहा है, यह तो खोजा नहीं जा सका। यह टेनिसन का जीवन चरित्र हो सकता है, किंतु कवि का जीवन चरित्र नहीं। हम नहीं जान पाए कि मानव हृदय के समुद्र में जाल फेंक कर कवि ने कब इतना ज्ञान और भाव खींच लिया एवं कहाँ बैठकर अपनी वंशी में विश्व संगीत के सुरों का अभ्यास कर लिया। कवि ने जिस प्रकार कविता की रचना की है उस प्रकार जीवन की रचना नहीं की। उनका जीवन कविता नहीं। जो कर्मवीर हैं वे अपने जीवन का सृजन स्वयं करते हैं, कवि जिस प्रकार भाषा की कठिनाई के बावजूद छंद की रचना कर लेते हैं, जिस प्रकार सामान्य भाव को असामान्य सुर एवं छोटी बात को बड़ा अर्थ दे देते हैं, उसी प्रकार कर्मवीर लोग संसार की कठिन बाधाओं के मध्य अपने जीवन के छंद का निर्माण करते हैं एवं चारों ओर की क्षुद्रता को अपनी असाधारण क्षमता से महान बना लेते हैं। उन्हें अपने आसपास जो भी थोड़ा बहुत माल मसाला मिलता है उसी को लेकर वे अपने जीवन को महत बना लेते हैं एवं उन लोगों को भी बृहत कर देते हैं। उनके जीवन का कर्म ही उनका काव्य है, इसीलिए मनुष्य उनकी जीवनी की उपेक्षा नहीं कर सकता। किंतु कवि का जीवन मनुष्य के किस काम आएगा? उसमें स्थायी पदार्थ क्या है? कवि के नाम के साथ बांध उसे ऊपर टांग रखना क्षुद्र को महान के सिंहासन पर बैठाकर लज्जित करने जैसा है। जीवन चरित्र महापुरुष का और काव्य महाकवि का। किसी किसी क्षण जन्मा कोई कोई व्यक्ति काव्य एवं जीवन कर्म दोनों ही में अपनी प्रतिभा विकसित कर लेता है। काव्य और कर्म दोनों ही उसकी एक प्रतिभा का फल है। उनके काव्य को उनके जीवन के साथ मिलाकर देखने पर उसका अर्थ अधिक विस्तृत और भाव गहनतर हो उठता है। दांते की कविता में दांते का जीवन जड़ा हुआ है। दोनों का एक साथ पाठ करने पर जीवन एवं काव्य की मर्यादा अधिक अच्छी तरह समझ में आती है। टेनिसन का जीवन वैसा नहीं है। वह एक सज्जन पुरुष का जीवन है, किंतु वह किसी भी प्रकार से प्रशस्त, बृहत या विचित्र नहीं कहा जा सकता। उनके काव्य के साथ उनके जीवन की तुलना नहीं की जा सकती, बल्कि उनके काव्य में जिस मात्रा में संकीर्णता है, विश्वव्यापकता का अभाव है, आधुनिक विलायती सभ्यता की दुकानों और कारखानों की ताज़ा गंध कुछ अधिक मात्रा में है, जीवनी में उसी भाग का प्रतिबिंब मिलता है। किंतु जिस अर्थ में वे विराट हैं, जिस प्रकार उन्होंने मनुष्य के साथ मनुष्य को, सृष्टि के साथ सृष्टिकर्ता को एक उदार संगीत राज्य में समग्र रूप में दिखाया है, उनका वह महान रूप जीवनी में व्यक्त नहीं हो सका है। हमारे प्राचीन भारतवर्ष के किसी भी कवि का जीवन चरित्र नहीं मिलता। इसके लिए मेरे मन में कुतूहल सदा रहता है, किंतु दुख नहीं। वाल्मीकि के संबंध में जो कथा प्रचलित है, कोई भी उसकी गणना इतिहास में नहीं करेगा। हमारे विचार से वही कवि का स्वाभाविक इतिवृत्त है। वाल्मीकि के पाठकों ने वाल्मीकि के काव्य से जिस जीवन चरित्र की सृष्टि कर ली है, वह वाल्मीकि के वास्तविक जीवन की अपेक्षा अधिक सत्य है। किस आघात से वाल्मीकि के हृदय को भेद कर काव्य का उत्स फूटा था? करुणा के आघात से। रामायण है करुणा का अश्रु निर्झर, विरही क्रौंच का शोकार्त क्रंदन रामायण कथा का मर्मस्थल प्रतीत होता है। रावण ने भी व्याद की भांति प्रेमी युगल को अलग अलग कर दिया है। लंका कांड का युद्ध दृश्य, लंका कांड का रावण ने भी व्याद की भांति प्रेमी युगल को अलग अलग कर दिया है। लंका कांड का युद्ध दृश्य, लंका कांड का युद्ध दृश्य पागल विरही के पंखों की फड़फड़ाहट है। रावण ने जो विच्छेद कर डाला वह मृत्यु विच्छेद से भी अधिक भयानक है। मिलन के बाद भी उस विच्छेद का प्रतिकार नहीं हो सका। सुख का आयोजन कितने सुंदर रूप में उपस्थित हुआ था। पिता का स्नेह, प्रजा की प्रीति, भ्राता का प्रेम, उसी सबके बीच था नवविवाहित राम सीता का युगल मिलन, युवराज पद का अभिषेक पर्व। इसी सुख संभोग को संपूर्ण एवं महत्तर बनाने के लिए ही उपस्थित हुआ था। ठीक उसी समय व्याध ने अपना निशाना साधा। वही तीर विद्ध हुआ सीता हरण के समय। उसके बाद से अंत तक विरह का अंत नहीं हुआ। दाम्पत्य सुख के गहनतम आरंभ काल में ही दाम्पत्य सुख का दारुणतम अंत। क्रौंच मिथुन की कथा रामायण की मूल कथा का संक्षिप्त रूपक है। स्थूल कथा यही है। लोगों ने निसंदेह इस सत्य का आविष्कार किया है कि महाकवि का निर्मल अनुष्टुप छंद प्रवाह करुणा के उत्ताप से पिघलकर कंपायमान हुआ है। दाम्पत्य सुख के अकाल चिरविच्छेद की घटना ने ही कवि के करुणार्द्र कवित्व को उन्मथित कर दिया है। इसके अलावा भी एक कहानी है, रत्नाकर की कहानी। वह एक और ही तरह की कहानी है, रामायण की काव्य प्रकृति की एक दूसरे ही पक्ष से समालोचना। यह कहानी रामायण के रामचरित्र की ओर लक्ष्य करती है। यह कहानी कहती है कि ऐसा नहीं कि राम सीता के विच्छेद दुख की अंतहीन करुणा ही रामायण का मुख्य अवलंब है, बल्कि राम के चरित्र के प्रति भक्ति ही इसका मूल है। राम का ऐसा चरित्र है, भक्ति की ऐसी शक्ति है कि उसने डाकू को कवि बना दिया है। रामायण के राम भारतवर्ष की आंखों में कितने बड़े होकर उभरे हैं, मानो इस कथा ने यह तोलकर दिखा दिया है। ये दोनों कहानियां कह रही हैं कि कवित्व का मूल दैनंदिन बातचीत में, चिट्ठी पत्री में, देखने सुनने में, कामकाज में, शिक्षा दीक्षा में नहीं, उसके मूल में एक बृहत आवेग का संचार है। मानो कोई एक आकस्मिक अलौकिक आविर्भाव हो, वह कवि के आयत से, क्षमता से परे है। कवि कंकण ने जो काव्य लिखा था, वह भी स्वप्नादिष्ट होकर देवी के प्रताप से। कालिदास के संबंध में जो कथा है, वह भी इसी प्रकार की है। वह मूर्ख, अरसिक और विदुषी पत्नी के परिहास भाजन हुए, अकस्मात दैव प्रभाव से वे कवित्व रस से परिपूर्ण हो उठे। वाल्मीकि निष्ठुर दस्यु थे और कालिदास अरसिक मूर्ख। इन दोनों बातों का एक ही तात्पर्य है। वाल्मीकि की रचना में जो दयामय पवित्रता है, एवं कालिदास की रचना में रसपूर्ण वाग्वैदग्ध्य की जो अद्भुत अलौकिकता है, उसे व्यक्त करने की ही चेष्टा यह है। जनसाधारण ने ये कहानियाँ कवि के जीवन से नहीं चुनी, बल्कि उनके काव्य के भीतर से एकत्र की हैं। कवि के जीवन से जितने भी तथ्य प्राप्त किए जा सकते थे, कवि के काव्य के साथ उनका कोई गहन या चिरस्थायी संबंध नहीं था। वाल्मीकि की दैनंदिन कथावार्ता और कामकाज कभी भी उनकी रामायण के साथ तुलनीय नहीं हो सकते थे, क्योंकि वह सारा व्यापार सामयिक अनित्य था। रामायण उनके भीतर की नित्य प्रकृति की, समग्र प्रकृति की सृष्टि है। वह एक अनिर्वचनीय अपरिमेय शक्ति का विकास है। वह अन्यान्य कामकाज की तरह क्षणिक विक्षोभ से उत्पन्न नहीं है। टेनिसन का एक काव्यगत जीवन चरित्र लिखा जा सकता है। वास्तविक जीवन की दृष्टि से वह निर्मूल होगा, किंतु काव्य जीवन की दृष्टि से समूल। कल्पना के सहारे बिना उसे सच नहीं किया जा सकता। उसमें लेडी शैलेट और राजा आर्थर के युग के साथ साथ विक्टोरिया युग का अद्भुत सा मिश्रण होगा। उसमें मार्लिन का जादू एवं विज्ञान का आविष्कार एक साथ होगा। वर्तमान युग ने उन्हें विमाता की भांति बाल्यकाल में कल्पना के अरण्य से निर्वासित कर दिया था। वहाँ पुरातन भग्न दुर्ग में एकांतवास करते हुए किस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन का चिराग प्राप्त किया, किस प्रकार राजकन्या से उनका मिलन हुआ, किस प्रकार पुरातन धन संपदा लेकर वे वर्तमान काल में राजवेश में बाहर निकले, वह सुदीर्घ आख्यान लिखा नहीं गया। यदि लिखा जाता तो एक का लिखा दूसरे के लिखे जैसा न होता। टेनिसन का जीवन भिन्न भिन्न समय में और भिन्न भिन्न लोगों की वाणी में नए नए रूप लेता रहता। दोस्तों, ये था कवि जीवनी रविंद्रनाथ ठाकुर का निबंध, जो साहित्य से लिया गया है। इस निबंध में उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि भारत में लेखकों के बारे में जिस तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित हुई और जिस तरह से उनके साहित्य के माध्यम से ही उनके बारे में चीज़ें स्थापित हुई, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कवि का व्यक्तिगत जीवन और उसका साहित्यिक जीवन दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पाठकों ने, जन ने, लोगों ने उनके साहित्यिक जीवन को ही महत्व दिया। उनके बारे में जो चीज़ें प्रचलित हुई वे सब उनके साहित्यिक जीवन से ही निकल कर आया हुआ एक तरह से निचोड़ है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेख पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और लेख के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।